अपने को पंडित मानता था। पंडित का अर्थ होता है जो पंडा से युक्त है। पंडा कहते हैं सब असत विवेकवती बुद्धि को, जिसके पास सही और गलत को छांटने वाली बुद्धि होती है उसको पंडित कहते हैं। तो वो उसको अभिमान था कि मैं सही कर रहा हूं, मैं इसको अभी मारा नहीं, यही कुछ कम ड्यूटी अदा कर रहा हूं। अभी तो मुझे पीटना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं क्षमा कर रहा हूं। पंडित मानिन। और जटभरत जी कैसे थे? सौ भगवान ब्राह्मण, ये भगवान, भगवान का अर्थ है कि भगवान के गुण उनमें उतरे थे। दिन रात भगवान को हृदय में रखने के कारण भगवदीय गुण उनमें आ गए थे, भगवान के दैवी सद्गुण उनमें आए थे। यह क्रोध का अभाव था, इसलिए भगवान कहा गया है। जिसमें क्रोध कभी न आवे वो भी भगवान है। तो सेवक भगवान है, लेकिन वो अभी भगवान जैसा, जिसमें क्रोध न आवे, काम न आवे, राग न आवे, वो भगवान। तो भगवान ब्राह्मण, और ब्राह्मण कहा जा रहा है क्योंकि विदित ब्रह्म तत्व, और भगवान को जानते थे, ब्रह्म को जानते थे, पूरा पूरा लगे हुए थे उसी में। तो जब भरत जी भगवान हैं और ब्राह्मण हैं, मतलब क्रोधहीन और ब्रह्म तत्व को जाने हुए। और दूसरी बात है सर्व सुहृद आत्मा, आत्मा में स्वभाव, उनका स्वभाव था समस्त प्राणियों का हित करना, यही स्वभाव। स्वभाव अलग अलग व्यक्ति का होता है, उनका स्वभाव था सबका सुहृद, सबका हित करना। तो राजा रघुगण के भी हित करने की वो सोच रहे थे, यही उनके मन में था। वो तो इस तरह से गाली दे रहे थे, बोल रहे थे कि ये हमारा अपमान कर रहा है, पालकी ठीक से नहीं ढो रहा है, लेकिन फिर भी जटभरत जी उनका हित करना चाहते थे। इसको कहते हैं सर्वभूत सुहृद आत्मा, चाहे कोई कुछ भी करे उसका स्वभाव करना। जैसे बच्चे माता पिता का तिरस्कार करते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता उनका हित करना चाहते हैं।
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अमृत सप्ताह प्रारंभ हुआ है, आज अमृत आ गया। अभी तो मंथन चल रहा था, श्री जगभरत जी के श्रीमुख से जो वाक्य निकले हैं वही सप्ताह के अमृत। और राजा रघुगण परम भाग्यशाली हैं जो इसको पिए। कल यह कथा हो चुकी थी कि राजा रघुगण जटभरत जी पर बहुत आक्षेप किए, क्योंकि उन्हें अभिमान था कि मैं राजा हूं, रजोगुण से तमोगुण से मति अच्छन्न हो गई थी। यद्यपि वे भक्तों का संग किए थे, महात्माओं का, ज्ञानियों की सभा में बैठे थे, उनकी सेवा किए थे, लेकिन फिर भी राजा होने के कारण सत्संग जनित विवेक नष्ट हो गया। इसे सिद्ध होता है कि यदि हम भगवत कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, फिर भी अपने को जटिल व्यवहार से बचाए रखना चाहिए, नहीं तो सत्संग से उत्पन्न हुआ ज्ञान तुरंत नष्ट हो जाता। जो सौवीर या सिंधु देश से ये गंगा सागर जा रहे थे तो उसमें इनका सत्संग जनित विवेक कारण था। तो कौन व्यक्ति अपने राज्य को छोड़कर जाएगा सत्संग करने के लिए, वो भी पहुंचने में ही कई महीना लग जाता है कि नहीं? आजकल तो लोग केवल संडे की छुट्टी होती है तो थोड़ा सत्संग कर लेते हैं, बाकी अपना राज्य देखते हैं। राजा रघुगण कितने विवेकी थे, राज्य छोड़कर जा रहे थे भगवान से ज्ञान लाभ के लिए, लेकिन ऐसा विवेकी व्यक्ति भी विवेक खो बैठा केवल पाल के हिलने से। वे योगेश्वर चर्यायाम न अति व्युत्पन्न मति, योगेश्वर भगवान के परम भक्त जन कभी कभी जड़ जैसा व्यवहार करते हैं, अंध बधिर जैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में राजा रघुगण को कोई पता नहीं। अव्युत्पन्न मति, अगर वो पहले से सुने होते कि भक्ति योग में उन्नत सत्पुरुष कभी कभी अपने को संसार में जड़ जैसा दिखाते हैं, व्यवहार से सुनने इस बात का उन्हें पता होता तो एक बार शंका करते कि भाई ये कौन है क्या है, लेकिन वो इसको सुने नहीं थे। हम लोग किसी को देखते हैं इस तरह से, मान लीजिए किसी आदमी को कपड़ा नहीं पहना है, चुपचाप बैठा है, तो एक बार जरूर कह देते हैं देखो चतुरत जी, एक बार हम लोगों के मुख से निकल जाता है, क्योंकि हम लोग सुने हैं। कभी कभी शंका होती है हो सकता है कोई भक्त हो इस तरह से देह का तिरस्कार करके, व्यवहार का तिरस्कार करके रह रहा है। तो राजा रघुगण इस विषय में नहीं जानते थे, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि योगेश्वर चर्यायाम न अति व्युत्पन्न मति, वो नहीं जानता। तो ऐसे राजा से, जो राजा पूर्ण क्रोध में था, जब भरत जी स्मय मान इदम आह, मुस्कुराते हुए कहे, मुख पर सहज प्रसन्नता थी, उसके आक्षेप का कोई प्रभाव नहीं था, और विगत स्मय, स्मय मान विगत स्मय, स्मय का अर्थ होता है गर्व। जब भरत जी के हृदय में कोई गर्व नहीं था कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं या भक्त हूं, मैं देह से परे हूं, कोई गर्व नहीं, यह गर्व होना भी एक दोष है। कोई अगर माने कि मैं तो अब पहुंच गया, बहुत बड़ा भक्त हो गया, तो यह स्वयं ही एक नहीं भक्ति का लक्षण। तो स्मय माना लेकिन विगत स्मय, सहज प्रसन्नता के मुख पर और वे बोले, तो दितम व्यक्त मधु प्रलब्धम, कि राजा जी आप जो यह कहे हैं कि मैं भार नहीं ढोया हूं, उसके आक्षेप का यही अर्थ है कि तुम ढोए नहीं हो और फिर भी क्यों नहीं चल रहे हो जल्दी जल्दी। तो जब भरत जी कहते हैं कि आप जो कहते हैं कि मैं नहीं ढोया हूं, तो वास्तव में मैं नहीं ढोया हूं, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, मैं बिल्कुल पालकी नहीं ढोया हूं और न मैं रास्ता चला। वो कह रहा था कि तुम रास्ता बहुत नहीं चले हो, ढोए नहीं हो, फिर भी क्यों धीरे धीरे चल रहे हो, तो इसी का उत्तर दे रहे हैं। राजा रघुगण की बात का खंडन नहीं किए, मंडन किए, यह प्रीचिंग का स्टाइल है। के कहते हैं त्वयोदितम त्वया उदितम, उदितम मतलब कथितम, आपके द्वारा कथित बात अविप्रलब्धम, विप्रलब्ध कहते हैं जब हम किसी की बात को काट देते हैं या आक्षेप करते हैं, इसको संस्कृत में विसंवाद कहते हैं, या आक्षेप, विसंवाद संवाद के विपरीत बोलना, किसी को दुख लगने वाली बात बोलना, इसको विसंवाद कहते हैं। और किसी की बात का जब हम अपोजिशन करते हैं उसको विवाद कहते हैं, किसी के बात को काट देना ये विवाद है, यह था विसंवाद। बहुत भारी आक्षेप किया था, तो ये कहते हैं व्यक्तम अपलब्ध, ये तो स्पष्ट है कि आप जो कुछ कहे हैं हमारे विषय में वो बिल्कुल उचित था। कैसे कि भर्तु समय से यद यदि भारत, मैं संस्कृत के श्लोकों के बिल्कुल निकट चल रहा हूँ, जिससे भक्तों के लिए ये स्पष्ट हो जाए और बाद में भी वे इसका आस्वादन करते रहे पढ़ पढ़ करके कि हे वीर, संबोधन है यह। तो ये वीर क्यों संबोधित कर रहे हैं, किस विषय में वीर हैं? तो वीर में चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं हे वाक्य वीर, बहुत बोले, दवाई दे दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा। बोलने में तो आप वीर जरूर हैं। तो जिस तरह आप बहुत बहुत युद्ध जीते हैं, बहुत विवाद किए हैं, उसी तरह से जरा बुद्धि लगाकर मेरी बात को समझने में भी वीरता दिखाइए। मैं क्या बोल रहा हूं इसको आप समझ जाएंगे तब मानूंगा कि आप वीर हैं। बहुत युद्ध जीते, तो इसी अर्थ में वीर शब्द का प्रयोग है। वास्तव में राजा रघुगण स्पिरिचुअल दृष्टि से भी वीर थे। राज्य त्याग करके, राज्य का भार दूसरे पर दे करके और भगवान के लिए सत्संग में जाना, यह बहुत बड़ी वीरता थी। तो हृदय से जग भरत जी अप्रिसिएशन कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं, वास्तव में आप वीर हैं। तो राज छोड़ करके पालकी पर चढ़ करके आप जैसे सत्संग के लिए जा रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगा करके हमारी बात समझ लीजिए, यही इनका भाव था। आप समझ जाएंगे। तो भर्तु का अर्थ है भार ढोने वाला। यदि भार ढोने वाले का भार मेष्या, भार ढोने वाले का भार यदि मुझसे कोई संबंध रखता तब आपकी बात आक्षेप हो सकती थी, लेकिन वास्तव में भार ढोया है देह, और देह से मेरा कोई संबंध नहीं, तो वास्तव में मैं नहीं ढोया। आप जो कहते हैं कि तुम पालकी नहीं ढोए हो, तो वास्तव में मैं नहीं ढोया हूं, ढोया है देह। ये बहुत ऊंची बात थी। और गंतु यदि से अधिगम मध्वा, गंतु मतलब चलने वाले का, गमन करने वाले का, तो रास्ता चला है यह शरीर। यदि रास्ता चलने वाले है, शरीर का जो संबंध है, रास्ते से संबंध है, अगर उस रास्ते से अधिगम्य अध्वा से मेरा संबंध होता, आत्मा का संबंध होता, तो मैं मान लेता कि आपकी बात आक्षेप है, मैं नहीं चला हूं, फिर भी आप चलने को कर। लेकिन वास्तव में मैं नहीं रास्ता चला हूं, मैं मार्ग नहीं चला हूं, और मैं ढोया भी नहीं हूं, मुझ पर कोई भार नहीं है, न मैं रास्ता चला हूं, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं थका। और जहां तक आपने यह कहा कि तुम मोटा हो, हाँ यह बात है, मैं अवश्य कहूंगा कि मोटापना या छोटापना या थोड़ा बड़ा, छोटा बड़ा का जो माप है, यह देह में प्रयुक्त होता है, आत्मा में नहीं। न विदम प्रमाद, वित का अर्थ जानकार। जो लोग आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, वे लोग आत्मा के लिए वह मोटा है या छोटा है, छीण है, काला है, गोरा है, या अमेरिकन है, भारतीय है, ये सब शब्द प्रयोग नहीं करते। न विदाम प्रवाद, प्रवाद मैंने प्रकृष्ट बात, विद्वान लोग इस तरह की बात नहीं बोलते हैं जैसा आपने कहा। विदाम शब्द दिया गया। हरे कृष्णा, अभी सोने लगे कृष्णा, हरे 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 राम। हम लोगों के यहाँ एक कहावत है, सौरी में ओझाई। कोई बच्चा जन्म लिया, अभी सूतिका गृह में था, तभी ओझाई चालू हुई, तो अब आगे क्या होगा। तो अभी मैं भागवत चालू ही कर रहा हूँ, तब तक कुछ लोग सोने लगे। आज तो ये दर्शन शास्त्र है, इसमें तो जरूर ब्रेन ऑफ हो जाएगा, समझ में कुछ बात नहीं आए कुछ लोग, लेकिन फिर भी सावधानी से सुनिए। बहुत बड़ा संवाद है और दो राजाओं के बीच में हो रहा है, राजर्षि भरत का अनुभव और राजा रघुगढ़। भागवत सुनने की या भक्ति या सत्संग करने की कितनी महिमा है, इन दोनों के प्रसंग से हम समझ सकते हैं। एक राजा जा रहा है राज छोड़कर सत्संग के लिए, और दूसरा राजा हरिण शरीर और ब्राह्मण हरिण शरीर पार करके ब्राह्मण शरीर में आकर के वो राजकाज क्या आसन तक नहीं लगा रहा है बैठने के लिए। अपने धूली में बैठता था, खाता था कण पेड़िया फलीकरण और क्या क्या। वास्तव में इस जगत में कोई आवश्यक नहीं है कि हम बहुत अच्छा अच्छा खाएं, कोई जरूरी नहीं है। ये केवल देह तक इसका संबंध, आत्मा से कोई संबंध नहीं। तो दो महान पुरुषों के बीच यह संवाद हो रहा है, और भागवत की यह शैली है कि भागवत में किसी भी सिद्धांत को दृढ़ रूप से स्थापित करने के लिए पूर्व में हुए प्रसंग को उद्धृत किया जाता है। वक्ता यह नहीं कहता है कि ये मैं कह रहा, ऐसा ही कथोपकथन पूर्व काल में हुआ था उसे सुनिए। अब जहां भी देखिए यही स्टाइल है। सुत गोस्वामी से नमिशारण में साधुओं ने पूछा कि शास्त्रों का सार क्या है, क्या करने से हमारा हित होगा। तो सुत गोस्वामी सीधे सुखदेव गोस्वामी का संवाद प्रस्तुत करते हैं, और जब महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं तो सुखदेव गोस्वामी विदुर और मैत्रेय जी का संवाद प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से होता है। और सुखदेव गोस्वामी फिर ब्रह्मा जी और भगवान का संवाद प्रस्तुत करते हैं, नहीं नारद जी और ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी भगवान के साथ अपना जो संबंध है उसको प्रस्तुत करते हैं, भगवान ने ऐसा कहा। तो ये हम लोगों की परंपरा है, और इसी तरह से तत्व का वर्णन किया जाता है। ये बहुत दुर्लभ है, बहुत महत्वपूर्ण संवाद है श्रीमद् भागवतम में, देह और आत्मा को लेकर। हम लोग आत्मा है लेकिन हो गए हैं इस समय देह, माना देह में है, और देह में क्या है, देह को ही नक्श से सिख तक मैं मान लिया, देह भूत। हम लोगों को होना चाहिए वास्तव में ब्रह्म भूत, लेकिन हम जीव भूत हो गए हैं। जीव मतलब सूक्ष्म शरीर, ममई वाहन से जीव लोग के जीव भूत। भगवान कहते हैं मेरा ही सनातन अंश इस जगत में जीव भूत हो गया है, मतलब मनोभूत, मन को मैं मान लिया। ये होना है हमको ब्रह्मभूत, हम ब्रह्म हैं, भगवान के चिन्मय अंश हैं, हम शरीर से परे। तो इस संवाद को हम दो महान पुरुषों के संवाद से सुन रहे हैं, इस सिद्धांत को। अपने बारे में एक ज्ञान है वास्तव, बहुत बार हम लोग भगवान के विषय में सुनते हैं, जरा अपने विषय में भी सुनना चाहिए कि हम क्या है ना। कोई नहीं जानता है इस जगत में कि हम क्या है वास्तव, अपने को भुला हुआ है। तो राजा रघुगण से जटभरत जी कहते हैं कि शरीर के भार से भी हमारा संबंध होता तो मैं मान लेता कि आप मुझ पर आक्षेप कर रहे हैं, लेकिन शरीर ढोया है मैं नहीं ढोया, शरीर रास्ता चला है मैं नहीं चला, और देह में आप मोटापन देख रहे हैं लेकिन मुझमें मोटापन नहीं है, आत्मा में मोटापन या पतलापन नहीं होता। राजा भरत के लिए बहुत भारी चुनौती, राजा रघुगण के लिए बहुत चुनौती, एक ही वाक्य से उनका मन बदल गया, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो हम लोग जो आत्मा को देख देह को तो देख रहे हैं, तो किसी की ऊंचाई 6 फीट भी होगी, किसी की 5.5 फीट होगी, किसी की कुछ होगी, किसी की कुछ होगी, और सीना नापा जाता है कुर्ता सीने के लिए रोज, हाथ नापा जाता है, ये नापा जाता है, इसको कहते हैं पीवा, जो मोटा है उसको पीवा कहते हैं, और जो छीण होता है उसको क्रिस या छीण कहते। यह शरीर है, इस शरीर के भीतर आत्मा कहाँ है और क्या साइज है उसका, उपनिषदकार कहते हैं कि एक केश के अग्रभाग को 100 भाग में बांटा जाए और फिर 100 भाग में से एक भाग को पुनः 100 भाग किया जाएगा, उतना सूक्ष्म जीव का स्वरूप। तो इस शरीर में तो उसकी वास्तव में कोई सत्ता नहीं, एक तो पूरा स्थूल शरीर है, इसमें आत्मा बहुत छोटा है, और वही आत्मा जो बालाग्र सतभाग से श्रद्धा कल्पित से छ, वो है अपने को देह मान रहा है। और सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान का बोध कर रहा है, आत्मा इस दुर्गति में पड़ा हुआ। तो इस तरह से इस आत्मा को जगाना समझाना बहुत जरूरी है, तुम ये देह नहीं। अगर बाहर निकाल करके आत्मा को रखा जाए शरीर के ऊपर कहीं, और कोई कहे कि देखो, कोई औजार नहीं है, कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिससे देखा जा सके, लेकिन वह जब भीतर है तो अपनी वो छोटा होता हुआ भी अपनी चेतना से इस जड़ शरीर को चेतनीभूत कर रहा है। ये हाथ हिल रहा है, पैर चल रहा है, आंखें देख रही हैं, वो यहां से बैठ करके देख रहा है, हाथ हिला रहा है, कर रहा है, और इस शरीर को छोड़कर तो चला जाएगा। जिस समय चला जाता है उस समय यह शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। तो रास्ता कौन चलता है? शरीर चलता है, यह भार शरीर ढोता है। जब भरत जी कहते हैं मैं नहीं ढोया हूं, मैं नहीं रास्ता चला हूं, इसलिए मैं थका नहीं, आप ठीक कहते हैं कि मैं नहीं थका। उसने कहा था क्योंकि मैं चला ही नहीं, मैं भार ढोया नहीं। जब कोई आदमी वजन ढोता है तो शरीर थक जाता है, पसीना आ जाता है, या रास्ता चलता है तो पसीना आ जाता है, थक जाता है। मैं नहीं थका, मैं चला ही नहीं हूं और न मैं भार ढोया। और जहां तक मोटापना की बात है तो ये विद्वान लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, आत्मा में मोटापना का भाव नहीं करते। देहा एव तीनों न अहम इत्यर्थ। श्रीपद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देह मोटा है, मैं मोटा नहीं, मैं तो बाल के अग्र भाग के सप्धा टुकड़े में से एक टुकड़े के बराबर। देह मोटा है, मैं मोटा नहीं। अच्छा, इतना ही नहीं, केवल मोटापन ही नहीं, शरीर के जो भी धर्म है वो मुझमें नहीं है। धर्म मतलब स्वभाव स्वरूप, तो सब गिना रहे हैं। स्थौल्यम कार्श्यम व्याधयाधयश्च क्षुत्रीर्भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदोसु च देहेन जातस्यैमेन सन्ति न केवलं पुनत्वमेव नो नास्ति अपि अन्येऽपि देहधर्मा मयि न सन्ति। अन्य भी जो देह के स्वभाव हैं उसमें नहीं है। इस तरह से देखना चाहिए अपने को। स्थौल्यम, स्थौल्य का अर्थ स्थूलता, पिनत्व मोटापना, और कार्श्यम दुबलापना दुर्बलत्व। तो मोटा शरीर होता है या क्षीण कृश शरीर होता है, मोटापना को स्थौल्य कहते हैं और कृष्ता को कार्श्यम। व्याधया रोगा, शरीर में मोटापन होता है, शरीर में दुबलापन होता है, या रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं, आत्मा में नहीं। इसको व्याधि कहते हैं। व्याधि जो शरीर में दृष्ट होता है, दिखाई पड़ता है, उसको व्याधि भी आदि आदि शब्द में भी शब्द लगा हुआ है, उसको कहते हैं व्यक्त आदि। आदि का अर्थ है मानसिक पीड़ा, मानसिक संताप। हम मन में कुछ सोच करके जलते रहते हैं, चिंता करते हैं, इसको आदि कहते हैं। लेकिन शरीर में कुछ फोड़ा फुंसी या कफ हो जाना, बुखार आ जाना, इसको व्याधि कहते हैं प्रकट। तो शरीर में व्याधियां होती हैं, आत्मा में नहीं। जब से शरीर जन्म लिया है और मृत्यु पर्यंत कई कई प्रकार के रोग हो गए, मान लीजिए दांत में रोग हुआ, आंख में रोग हुआ, कान में रोग हुआ, आंख में सब, उसका आत्मा पर कुछ भी असर नहीं होता। आत्मा कभी रोगी नहीं होता, वह चिन्मय है, स्प्रिट है, उस पर जड़ पदार्थ का असर नहीं होता। और आध्य मानसिक पीड़ा, कोई व्यक्ति चिंता में है और आप पूछते, अगर आप पूछिए कि क्या आपको कष्ट है, तो आदमी कहेगा हमको ये कष्ट है, वो कष्ट है, ये कष्ट है। तो वास्तव में मन का कष्ट है, आत्मा का नहीं, आत्मा मन से परे है। आत्मा को इस संसार से क्या लेना देना है कि उसे चिंता होगी। छूत छूत का अर्थ भूख, भूख जब लगती है, कुछ खाने की इच्छा होती है, तो आत्मा की भूख नहीं है। आत्मा कभी जड़ पदार्थ खाना नहीं चाहेगा और न उसको भोजन की जरूरत है। आत्मा पूर्ण चिन्मय है, ज्ञानमय है और नित्य है, तो उसमें भूख नहीं लगेगी। वो अपने आप में तृप्त है, अपने आप में पूर्ण है। ऐसा नहीं कि इधर से दूध या चटनी या भात देंगे तब आत्मा जाकर के सुखी होगा। ये भूख लगना शरीर का धर्म है, धर्म मतलब स्वभाव। शरीर में भूख लगती है राजा जी, आत्मा में नहीं। और तृप्त प्यास, प्यास भी आत्मा को नहीं लगती है, शरीर को लगती है। भयम, भय भी शरीर को होता है, मन को होता है। यहां शरीर से मतलब मन, सूक्ष्म शरीर भी है। आत्मा को कोई भय नहीं होता है, क्योंकि उसका कुछ हो ही नहीं सकता, बिगड़ नहीं सकता। नैनम छिंदंति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्रुद्धं त्यापुन न शोषयति मारुत। वो किसी अस्त्र से कट नहीं सकता, यहां तक आग के बीच डाला जाए, आग से जल नहीं सकता, पानी से गीले नहीं हो सकता। इसीलिए आत्मा में कोई भय नहीं होता। कितना शरीर बदल करके आत्मा आया है, लेकिन वो जीव का त्यों का है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो कटा छोटा नहीं, वो छोटा नहीं हुआ। तो इस कारण से आत्मा में भय नहीं है, भय होता है मन में। कली का अर्थ है डिस्प्यूट, कलह, किसी बात में झगड़ा हो जाना, कलह हो जाना। हमको ये पसंद नहीं, हमको ये पसंद नहीं, इसको कलह कहते हैं। इस संसार में कलह हो ही जाता है, लेकिन आत्मा में कलह नहीं है। आत्मा कलह नहीं करता। इसका अर्थ ये है कि आत्मा अप्राकृत है, दिव्य है। यहां कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आत्मा के लिए आवश्यक हो और जिसके लिए आत्मा झगड़ा करे। यह प्रायः जो कलह होता है वो वस्तु के लिए होता है, या अपना विचार स्थापित करने के लिए होता है। लेकिन आत्मा को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्यों कलह करेगा? यहां कभी कभी सीट के लिए झगड़ा हो जाता है ट्रेनों में, बसों में, कलह हो जाता है। मैं बैठूंगा। लेकिन आत्मा कभी बैठता नहीं है, अन्य आत्मा खड़ा रहता है, शरीर बैठता है। तो कलह करता है मन, कलह शरीर करता है, आत्मा नहीं। और इच्छा, इच्छा का अर्थ है विशेष राग, विषय भोगों में जो राग है, लालसा है, वह मन की लालसा है, आत्मा की नहीं। आत्मा इससे परे, इसलिए मन में राग नहीं हो सकता है, आत्मा में राग नहीं हो सकता है कि आत्मा स्प्रिट है। उसमें अगर अभिलाषा भी होगी तो स्पिरिचुअल अभिलाषा होगी, और कृष्ण की भक्ति करना चाहेगा, कृष्ण को पाना चाहेगा। संसार की किसी भी वस्तु को लेने की कभी उसे लालसा नहीं हो सकती, संभव नहीं है। ये लालसा मन की लालसा है, और आत्मा मन को ही मैं मान लिया है, यही दिक्कत। आगे चलकर सारा विषय इसी को समझाने में बीतेगा, सारे अध्याय जो खर्च किए गए, मन से आत्मा को सेपरेट करना, बस सारा काम हो जाएगा। ये आत्मा को कुछ करना नहीं है, केवल इतना ही करना है कि मन से इसको अलग कर देना। आगे के प्रवचन में जर भरत जी बताएंगे। तो विषयों में जो राग है वह मन का राग है, वह आत्मा का नहीं। और जरा, जरा का अर्थ है जीर्ण होना, जरा जो किसी को छीण कर देती है, बुढ़ापा इसको कहते हैं। शरीर जीर्ण होता है, आत्मा का विचरण नहीं होता, नहीं अनादि काल से आत्मा है इसलिए वो भी अब बूढ़ा हो जाएगा या थोड़ा कट जाएगा, कहीं ऑपरेशन करके पैर अलग कर दिया जाएगा या हाथ अलग कर दिया। आत्मा को कोई भी प्राकृत औजार काट नहीं सकता, नैनम छिन्नम के शस्त्राणि, कोई शस्त्र उसको दो टुकड़े में कर नहीं सकता। और शरीर तो जीर्ण हो ही जाता है, बुढ़ापन में शरीर झुक जाता है और सब हो जाता है, लेकिन आत्मा जीर्ण करते हो रहता है। यही कारण है कि यहां तक कि बूढ़े आदमी को भी आप बूढ़ा कह दीजिए तो उसे दुख लगता है, क्योंकि आत्मा बूढ़ा है नहीं, सब लोग एक उम्र के हैं। वास्तव जितने भी जीव हैं सब एक उम्र के हैं, अनादि काल से मनोवान से जीव लोग के जीव होता सनातन, जितने भी जीव हैं वो सनातन, केवल आगे पीछे शरीर मिला हुआ है इसलिए कहते हैं कि वो लड़का है वो बूढ़ा है, बाकी सब एक ही आयु के। मान लीजिए आज कोई नया कपड़ा पहन कर आ गया तो ये नहीं कहेंगे कि ये बच्चा है, या किसी का कपड़ा पुराना हो गया तो हम इसके लिए नहीं कह देंगे कि वो बूढ़ा है। तो शरीर जीर्ण होता है, आत्मा जीर्ण नहीं होता। और निद्रा, निद्रा शरीर को आती है, बुद्धि को आती है, आत्मा को नहीं।